प्रस्तुत करता है कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता। एक श्रोता से बातचीत और उनकी पसंद के चंद फिल्मी गीत।
नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। इसके विषय में तो आप जानते ही हैं कि हम अपने श्रोता से हर हफ्ते किसी एक श्रोता से बात करते हैं, तो इस बार आप हमारे मेहमान हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका।
हाँ मैडम, मेरा प्यार भरा नमस्कार और अर्पा की सभी उद्घोषकों और श्रोता बंधुओं को मेरा पुनः नमस्कार।
जी जी बहुत स्वागत आपका। तो नारायण जी, हम आपसे अगले कुछ देर तक बातचीत करेंगे और आपकी पसंद के गाने सुनेंगे। तो हम बातचीत की शुरुआत तो इसी बात से करते हैं कि हमारे बहुत सारे बाकी सुनने वाले श्रोताओं को अपने विषय में थोड़ा सा बताइए, आप कहाँ के हैं, क्या करते हैं।
मैडम, मेरा नाम नारायण प्रसाद वर्मा है। मैं नवागढ़ का कई जिला बेमेतरा का निवासी हूँ और मेरा पोस्ट है बदनारा, जिला बेमेतरा।
जी जी
जी मैडम,
क्या करते हैं नारायण जी आप।
मेरा खेती किसानी है और साथ में किराना और कृषि केंद्र भी संचालित करता हूँ मैडम जी।
अच्छा, तो खेती किसानी पुश्तैनी आप पिताजी के समय से करते आ रहे हैं।
जी जी जब मेरे पिताजी थे, अभी तो स्वर्गवासी हो चुके हैं, तो उसी के दिन है तो मैं खेती किसानी से लगा हुआ हूँ मैडम जी।
तो बचपन से खेत में कुछ 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 करते रहने का शौक था आपको कि पिताजी जबरदस्ती ले जाया करते थे, चलो चलो।
नहीं मैडम, नहीं, मैं तो शौक से जाता था मजदूरों के साथ, और मजदूरों का ही देन है जो अपने कृषि कार्य को सीखा हूँ मैं, कि कब हमको किस टाइम बुआई करना है, किस टाइम लुआई करना है, ये सब ना मजदूरों का देन है मैडम जी।
तो पहले जो कृषि करते थे नारायण जी, पहले तो
जी
टिपिकल तरीके से की जाती थी, फिर बाद में बहुत बदलाव आने लगा। अभी क्या चेंज आया आपके पिताजी के समय में और आपके समय में।
बहुत कुछ चेंज आ गया है मैडम जी। अब क्या है, खेती हम लोग अब वैज्ञानिक पद्धति से करते हैं, जैसे आपके रेडियो से सुनते रहते हैं कि इस टाइम जोताई करो, इस समय बुआई करो, कि बीज इस प्रकार का डालो, ये सब। और पहले क्या था मैडम, इस प्रकार का हमारे पास कुछ तकनीकी नहीं था, तो हम हल से बुआई करते थे, तो उसमें क्या पिछड़ जाते थे, समय से बुआई नहीं हो पाता था, समय से निंदाई गुड़ाई बुआई नहीं हो पाता था। अब जो है वैज्ञानिक पद्धति से हम बिल्कुल अपने समय पे जोताई बुआई और लुआई का काम कर लेते हैं मैडम जी।
अच्छा नारायण जी, आप तो बहुत सालों से खेती से जुड़े हैं, आपके आसपास भी बहुत सारे लोग होंगे जो खेती करते हैं, तो क्या मुख्य समस्या आती है, बेसिकली क्या प्रॉब्लम आती है हमारे एरिया के किसानों को, क्या दिक्कतें आती हैं।
खेती किसानी में क्या है मैडम, जैसे कीट वगैरह जो है समय पर धान को नुकसान पहुंचाते हैं, या जैसे चना है वो नारी है उसको, तो इसी का विशेष ध्यान रखते हैं और समय पर अपना खाद जो है उसका उपयोग करते हैं।
कैसी मिट्टी है आपके इलाके की, आपके एरिया में।
हमारे इधर तो काली मिट्टी है मैडम जी।
अच्छा,
हाँ
तो मतलब फिर आप धान के साथ साथ कुछ और भी लगा पाते हैं।
जी, उसके बाद हम लोग जस्ट उन्हारी डालते हैं मैडम जी, जैसे तिवरा है, चना है, गेहूं, अरहर है। जी,
और पानी कैसा है आपके यहाँ।
पानी हमारे यहाँ वैसे पानी का लेवल सही है मैडम जी।
हाँ, तो सिंचाई के लिए आपने बोर रखा हुआ है या नहर आसपास है कहीं, तालाब वगैरह।
नहीं, हमारे पास बोर है मैडम, मेरे प्लाट है जो ना 30 एकड़ का प्लाट है और 4 बोर है मैडम उसमें।
अच्छा, तो पानी पर्याप्त हो जाता है।
जी,
तो अब जब फसल उगती है तो एक अंदरूनी खुशी भी होती है ना किसान को,
जी
तो अब इस
मैडम
खुशी
जी,
में नाच गाना भी होता है, कुछ हम गीत सुनते हैं, कुछ नृत्य करते हैं। तो अपने यहाँ तो
जी
बहुत सारे लोक संगीत, लोक गीत वगैरह प्रचलित है, लेकिन इस समय तो हम आपसे आपकी पसंद का कोई फिल्मी गीत पूछेंगे कि बताइए आपको कौन सा गीत सुना है।
फिल्म है मैडम, एक अपनापन है और क्या है उसमें, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, यही वाला गाना मेरे को अच्छा पसंद है मैडम जी।
वाह, तो हम आपको सुनवाते हैं ये गीत, सुनिए अपनी पसंद का गीत।
जी मैडम जी।
आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी रास्ते में यादें छोड़ जाता है।
आदमी मुसाफिर है,
आता है जाता है,
आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है।
अच्छा नारायण जी, हम आपसे बात कर रहे थे खेती किसानी की, तो ये तो ऐसा पेशा है जो आपको पारिवारिक रूप से मिला, पिताजी की तरफ से आपको मिला, फिर आपने किया। आपके बच्चे भी क्या इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं? क्योंकि जो नई पीढ़ी है वो ज्यादातर कुछ और करना चाहती है ना, खेती किसानी में ज्यादा रुचि नहीं आती। आपके यहाँ कैसी स्थिति है?
या मैडम, मेरा जो बड़ा वाला लड़का है ना, वो खेती किसानी में बिल्कुल तन मन धन से लगा रहता है।
अच्छा।
हाँ बिल्कुल, अपने समय से, जैसे अभी खेती का जुताई चल रहा है हमारे इधर, ग्रीष्मकालीन जुताई। और जो एक छोटा वाला लड़का है वो कृषि केंद्र देखता है, उसको कृषि केंद्र में बहुत अच्छा मालूम है मैडम जी।
अच्छा।
हाँ, और मैं जो हूँ अपना किराने का दुकान है उसमें बैठे बैठे आपका जो कार्यक्रम है, सभी कार्यक्रमों का आनंद लेते ही रहता हूँ मैं।
ये तो एक अच्छी बात है नारायण जी, जैसे बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि ना हम काम क्या करें, हमारे पास काम नहीं है, लेकिन आपने देखिए गांव में रहते हुए ही आप खेती भी करते हैं, आप किराने की दुकान भी चलाते हैं, आप कृषि केंद्र भी चलाते हैं, कितना कुछ करते रहते हैं आप।
जी
जी, ये सबको देखना और सुनना और सीखना चाहिए आपसे तो वाकई।
जी,
तो रेडियो, अब जैसे आपने बताया किराना की दुकान में आपके रेडियो चलता रहता है दिन भर, ये रेडियो भी आपको बचपन से ही मिली आदत रेडियो सुनने की कि बाद में लगी?
नहीं नहीं, वैसे मैं बचपन में सुनता था मैडम, जब एक बैंड का रेडियो निकला था उस टाइम मर्फी नाम था उस रेडियो का।
हाँ,
उसको सेल से ही बजाया जाता था, बैटरी से मतलब। और उसमें एक ही आकाशवाणी लगता था रायपुर सिर्फ, तब से सुन रहा था मैडम। उसके बाद क्या है, पढ़ाई जीवन में लग गया, फिर हायर सेकेंडरी किया, उसके बाद मैं रेडियो सुनना फिर जारी किया हूँ 1980 से।
अच्छा।
जी, तब से अब तक रेडियो सुनते आ रहा हूँ मैडम। मेरे पास तो 2-3 रेडियो है, FM है, और मोबाइल से भी अपना कार्यक्रम जैसे आपका अर्पण है वो सुन लेता हूँ मैं। जी मैडम जी,
तो घर परिवार के लोग भी सुनते रहते हैं बीच बीच में?
जी जी बिल्कुल, सभी लोग सुनते हैं मैडम जी,
सबको पसंद आता है। अब तो बहुत सारे चैनल हो गए, बहुत सारे ऑप्शंस हो गए रेडियो के ना।
जी मैडम जी, मैडम
जी। अच्छा नारायण जी, अभी आपने जी कहा कि आप स्कूल कॉलेज भी पढ़ते हुए रहे, तो आपके जो गांव के आसपास एजुकेशन का सिस्टम कैसा है? मतलब स्कूल भी है, कॉलेज भी है, कि दूर जाना पड़ता है आपको? अभी सब है वहाँ शिक्षा केंद्र?
जी हमारे गांव में क्या है मैडम, अभी 12वीं तक स्कूल है। और शिशु मंदिर भी है 5वीं तक के। और जैसे स्वास्थ्य की दृष्टि में देखें तो उप स्वास्थ्य केंद्र भी है। और कॉलेज के लिए बच्चे नवागढ़ जाते हैं मैडम, यहाँ से 14 किलोमीटर नवागढ़ है।
अच्छा, फिर साधन क्या होता है उनके पास?
बस से जाते हैं मैडम जी,
बस चलती है।
जी जी हाँ, बस सुविधा है नवागढ़ से नाथघाट भाटापारा के लिए। तो हमारे गांव में तो आजकल क्या है मैडम, हर गांव में रोड का सुविधा हो चुका है, जैसे प्रधानमंत्री
ग्राम सड़क योजना से। जी जी
उसी से जुड़ा हुआ है बिल्कुल मेरा गांव मैडम।
तो पंचायत में भी कोई दखल है आपका? पंचायत अपने काम कैसे करती है, ठीक ठाक चल रहा है आपके इधर?
जी जी हाँ, यहाँ का सरपंच वैसे 2 बार चुना जा चुका है मैडम सरपंच पद के लिए, और कार्य बहुत अच्छा है उनका भी, जैसे नाली निर्माण का कार्य है वो चल रहा है। हाँ मैडम जी,
तो अब जब सारी चीजें अच्छी हैं तो एक और अच्छी बात हम करते हैं कि एक और गीत सुन लेते हैं।
जी मैडम जी, मैडम
जी बताइए।
एक फिल्म है मैडम, जैसे अभी क्या है गर्मी आ रहा है तो हमको पानी का बचत भी करना चाहिए, पानी देख कर ही उपयोग में लाया जाए।
बिल्कुल।
तो फिल्म है शोर, गाने का बोल है पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, ये वाला सुना दीजिए मैडम।
बिल्कुल बिल्कुल, सुनाते हैं आपको ये गीत।
पानी पानी रे पानी तेरा रंग कैसा पानी रे पानी तेरा रंग कैसा
जिसमें मिला दो लगे उस जैसा
पानी रे पानी तेरा रंग कैसा रे पानी
भी है जीते रूखी सूखी खाते हैं और ठंडा पानी पीते
इस दुनिया में जीने वाले ऐसे भी हैं जीते रूखी सूखी खाते हैं और ठंडा पानी पीते
तेरे एक ही घूंट से मिलता जन्नत सारा
पानी रे पानी तेरा रंग कैसा
भूखे
बरसे सावन
पर तेरा रंग समझ ना आए
हम अपने बाकी श्रोताओं को बताएं कि आज हमारे मेहमान हैं नारायण वर्मा जी हम उनसे बातें कर रहे हैं और बातें करते करते हमको समझ में आया कि ये बहुत सारी चीजों में एक्टिव हैं। तो हमको ऐसा लगता है नारायण जी आप अपने काम के साथ साथ कुछ शौक भी रखते हैं, रेडियो सुनने के अलावा आपके और क्या शौक हैं?
क्या है मैडम जी, रेडियो सुन सुनकर तो हम बहुत चीज का शौकीन हो चुके हैं। एक तो हमारे खेती बाड़ी में शौक है, दूसरा अपना व्यवसाय का भी शौक है, और तीसरा क्या है जैसे कहीं मेला हो गया या अपना सत्संग का बात हो गया ये भी अपना सुन लेते हैं मैडम जी, जैसे रामायण वगैरह है और आपका जो चलता है यज्ञ वगैरह उसमें भी भाग लेते हैं मैडम जी।
पहले भी होता था ऐसा, गाँव में छोटी छोटी मंडलियां बनी होती हैं जो रामायण में और यज्ञ में कथा में कुछ गाती हैं, गुनगुनाती हैं, कथा सुनाती हैं, ऐसा आपके गाँव में भी है मंडली या बाहर से बुलानी पड़ती है?
नहीं नहीं यहाँ है मैडम जी मंडली, यहाँ है। हाँ यहाँ अपने लड़के लोगों का भी मंडली है और कुछ महिला मंडली भी है।
आपका जाना होता है कभी ऐसे मंडली में?
नहीं मैडम मैं तो फिर उतना नहीं जाता हूँ, पहले जाता था, अब तो उतना नहीं जा पाता हूँ मैडम।
अच्छा, काम की वजह से समय नहीं निकल पाता है।
हाँ और जैसे समय निकलता है तो गांव में ही सुन लेता हूँ मैडम जी, होते रहता है यहाँ। हाँ जी,
पहले के समय में तो यही एक साधन था ना लोगों के मिलने जुलने का, और भक्ति का भी और मनोरंजन का भी। अब तो बहुत सारे दूसरे साधन भी हो गए। तो आप अपने मनोरंजन के लिए और क्या करते हैं रेडियो सुनने के अलावा? रेडियो तो आपके दुकान में हमेशा चलता रहता है, जब कभी ऐसा मौका पड़ता है तो परिवार के साथ कहाँ जाना पसंद करते हैं, क्या करना पसंद करते हैं?
जैसे कोई तीर्थ स्थल है मैडम जी लगा हुआ, जैसे कभी कभार हम रतनपुर चले जाते हैं और कभी डोंगरगढ़ चले जाते हैं, और जैसे एक दो जगह है तो परिवार के साथ जाते हैं मैडम जी। परिवार के साथ जाने में ही, और जैसे बच्चों को ले जाते हैं तो जैसे चिड़ियाघर है और तो उनको देखने लायक है तो बच्चों को अपनी जो है शिक्षा देते हैं और बताते हैं उसके बारे में।
तो आपके गांव के आसपास भी कोई ऐसी चीज है क्या जिसको आपको लगता है कि हाँ ये बहुत खास है, लोगों को जानना चाहिए इसके विषय में?
अब जैसे मैडम बिलासपुर के पास है एक कान्हन पिंडारी।
हाँ,
हाँ तो वहाँ चले जाते हैं मैडम समय समय पर और बच्चों को वहीं अपना दिखा देते हैं जो है वहाँ के।
इन दिनों तो कानन पंडारी में बहुत सारे जानवर हैं ना?
जी जी मैडम, जी जी मैडम,
बहुत सारे तो ऐसे जानवर हैं जो पहली बार देखे। हम पिछले दिनों गए थे कानन पंडारी तो बहुत सारे ऐसे जानवर जो हमने कभी देखे ही नहीं। जी तो ये एक अच्छी बात है। तो आपके गाँव से कानन पंडारी कितनी दूर पड़ता है?
बिलासपुर जाना पड़ता है मैडम जी, और बिलासपुर से फिर उधर कानन पिंडारी जाना पड़ता है, तो ऐसे मान कर चलिए 70-80 किलोमीटर है।
फिर भी काफी दूर है।
जी मैडम, जी मैडम।
तो इसका मतलब तो यह है कि फिर मनोरंजन के लिए हमेशा इधर उधर नहीं जा सकते, रेडियो पर निर्भर रहा जाए, क्योंकि रेडियो तो आपके घर तक पहुंच जाता है।
जी मैडम, जी मैडम।
जी कुछ गाने का भी शौक रखते हैं क्या नारायण जी?
नहीं गाना तो उतना गाता नहीं हूँ मैं मैडम जी,
कभी कभी गुनगुनाते हैं। लग तो रहा है आपका।
अब क्या मैडम, जैसे सुनते रहते हैं तो गाने का जो आवाज है हमारे कानों में तो धड़कता ही रहता है।
बिल्कुल, तो जो आपकी अगली पसंद होगी हमको गुनगुना के बताइए, फिर हम आपको सुनवाते हैं।
एक फिल्म है मैडम हाथी मेरे साथी वाला, और उसका गाना है नफरत की दुनिया को छोड़ कर यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, यही वाला गाना है मैडम मेरे पसंद के। और गाना
बहुत अच्छा गाना है, पशु प्रेम का, आपको गुनगुनाना भी है?
फरत की दुनिया को छोड़ कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, नफरत की दुनिया को छोड़ कर।
वाह 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 वाह, बहुत खूब।
नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, इस झूठ की नगरी से तोड़ के नाता जा प्यारे अमर रहे तेरा प्यार, खुश रहना मेरे यार। सब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में वहशी उसे सारे, एक जानवर की जान आज इंसान ने ली है। चुप क्यों है संसार, खुश रहना मेरे
जानवर पाले हुए क्या? ज्यादातर पहले तो होता था ना, हम गाय वगैरह पालते थे, अधिकतर कृषकों के यहाँ तो होती ही थी गाय, तो आपने कुछ जानवर पाल रखे हैं?
जी जी है मैडम, मेरे यहाँ करीब 25-30 ठो गाय है, उसके लिए अलग चरवाहा रखता हूँ।
अरे वाह।
और बकरी भी है मैडम जी, मेरे यहाँ करीब 10-15 ठो बकरी है और भैंस वगैरह है। अपन तो क्या है मैडम, जानवर बिल्कुल रखे है, और जैसे अभी हम लोग घी का जैसे उपयोग करते हैं, देसी घी का उपयोग करते हैं मैडम जी, दूध भी मिल जाता है, दही भी मिल जाता है।
तो नारायण जी, अपने एरिए में गायों की कौन सी प्रजाति ज्यादा चलती है? क्योंकि कुछ लोगों से जब हमने पहले बात की थी ना, तो बाहर से वो जो गाय लेकर आते हैं यहाँ सरवाइव नहीं कर पाती, ज्यादा जिंदा नहीं रह पाती और उनका दूध भी कम हो जाता है, तो आपके इलाके में आपके गाँव तरफ कौन सी प्रजाति ज्यादा चलती है गाय की?
हमारे इधर तो देसी प्रजाति है मैडम जी,
वो जो छोटी गाय होती है,
छोटी गाय भले ही ये मतलब आधा किलो कोई एक किलो दूध देती है लेकिन देसी ही रखती है मैडम, इधर तो वो वाले गाय नहीं रखे हैं अभी जैसे अपना।
नहीं, और कहते हैं तो देसी गाय का दूध ही ज्यादा फायदे करता है ना।
जी जी मैडम जी।
तो फिर आप दूध का भी व्यवसाय करते हैं या खप जाता है घर में?
नहीं, घर ही में खप जाता है मैडम जी, व्यवसाय तो नहीं करते हैं।
तो जहाँ पर आपका खेत है वहीं पर आपने गौशाला जैसा बना रखा है?
जी जी। और क्या है, जैसे बताते रहते हैं ना कि उसके जो जैविक खाद है उसका उपयोग कीजिए करके, तो जैविक खाद के लिए हम घुरवा बना रखे हैं।
बहुत अच्छी बात है, आजकल तो बहुत प्रमोट हो रही है ये चीज कि हमको गोबर खाद बनाना है, तो आप क्या करते हैं वहीं बनाते हैं अपना खुद?
हाँ, घुरवा जैसे अपन गड्ढा खोद के रखे हैं मैडम जी। और यहाँ जो वैज्ञानिक है ना उसके बताए अनुसार उसका फिर हम लोग खाद बनाते हैं,
उसको खेत में उपयोग करते
हैं। हाँ, फिर खेत में उपयोग करते हैं, रासायनिक खादों का उपयोग तो बहुत कम करते हैं। जी मैडम, जी मैडम,
ये तो एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि कहते हैं कि रासायनिक खाद से फसल ज्यादा होती है, अगर आप जैविक खाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो शायद फसल कम होती है, ऐसा है क्या? फसल में कुछ फर्क पड़ते हैं?
हाँ बिल्कुल मैडम, क्या है लोग फसल ज्यादा उत्पादन के लालच में ना रासायनिक खाद का उपयोग ज्यादा करने लगे हैं, तो उससे क्या है मिट्टी का जो उर्वरक क्षमता है ना उसमें कमी आने लगा है। और जो जैविक खाद है ना इसको डालने से बहुत प्रभाव पड़ता है, जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति है ना उसमें बढ़ोतरी होती है।
फसल में थोड़ी कोई कमी आ जाती है कि पहले ज्यादा होता था, अभी आपने उर्वरक केमिकल डालना बंद कर दिया और जैविक खाद डाल रहे हैं, तो क्या फसल कम होती है थोड़ी?
हाँ कुछ तो फर्क पड़ता है मैडम जी।
अच्छा
हाँ, लेकिन इसका असर जो है तो ज्यादा दिन तक रहता है, और जैविक खाद का, और जैसे रासायनिक खाद डालते हैं उसका तो असर थोड़ी दिन के लिए है, एक दिखावटी टाइप का। हाँ
यानी
तो
लंबे समय तक अगर अच्छी खेती करनी हो तो फिर तो इधर मुड़ना ही पड़ेगा जैविक खाद की तरफ, है ना
जी
जी?
मैडम,
नारायण जी, बहुत अच्छी बातें हुई आपसे। अब एक गीत की गुंजाइश और बनती है, बताइए।
प्रेम पुजारी का सुना दीजिए मैडम जी, फूलों की रंग से दिल की कलम से, क्योंकि हम लोग किसान हैं और क्या है, फूल का खेती भी करते हैं, सभी
अरे
प्रकार
वाह।
का खेती कर लेते हैं। तो हमारा यही है एक गुजारिश और, कि फूलों की रंग से दिल की कलम से वाला एक गाना सुना दीजिए।
बिल्कुल बिल्कुल, आपको सुनाते हैं ये गीत।
फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा हूँ जैसे कि माला में धागा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। सांसों की सरगम धड़कन की बीना सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जूही की कली तू, छोटा सफर हो लंबा सफर हो सुनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हो पश्चिम उत्तर हो दक्षिण तू हर जगह मुस्कुराए, जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे उतनी ही तू पास आए। आंधी ने रोका पानी ने टोका दुनिया ने हंसकर पुकारा, तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। कितना मधुर तेरा मेरा प्यार। लेना होगा जन्म हमें कई कई बार, कई कई बार, कई कई बार।
और आपसे बात करके वाकई बहुत अच्छा लगा। आप सचमुच दुनिया रंग बिरंगी करते हैं। आप अनाज उगाते हैं, आप फूल उगाते हैं, आप दूध बनाते हैं, आप बहुत सारी चीजें करते हैं और सचमुच किसान दुनिया को रंगीन रखता है। तो आपको बहुत बहुत बधाइयां। आप अपने काम में जुटे रहिए और रेडियो सुनते रहिएगा। और जैसे अभी हम आपसे जुड़े हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, आप चिट्ठी लिखिएगा, मेल करिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा।
जी मैडम, जी मैडम
जी, बहुत धन्यवाद आपका।
आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे अर्पा परिवार को भी धन्यवाद मैडम। अभी अर्पा का 1 अप्रैल को दूसरा वर्ष गांठ है, तो स्थापना दिवस है, तो उसका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैडम जी।
जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
धन्यवाद मैडम।
आप सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।